حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ تمام عزاداران کا تشریف لانا اور ہمارا حاضر ہونا، اس تمام پرسے کو پروردگار سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت دعا مجلس کے لیے، بہت سارے مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات اور جن سب نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی حاجات کی برابری اور دعاؤں کی استجابت کے لیے خاندان زہرا پر بلند آواز میں درود پڑھیں گے، اذان محترم، اس عشرے مجالس کی آج آٹھویں مجلس ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عباد الرحمن کے صفات کے موضوع پر آپ سے بات جاری تھی، آٹھ صفات ہم اب تک بیان کر چکے ہیں، آج ہم नौवीं और दसवीं सिफत को इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों सिफात को आज और ग्यारहवीं और बारहवीं सिफत इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं पेशगी ही ये गुजारिश करूँगा तमाम अज़ादारान से कि आज और कल की मजलिस में इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त इजाफ़ी लगेगा ताकि हम अपने मौजू को मुकम्मल करें। कुछ वक्त आज और कुछ वक्त कल इजाफ़ी लगेगा। मसाइब का भी मेरा अपना दिल है कि आज और कल, आज हज़रत अब्बास अलमदार के मसाइब और कल खुद सैयद शहदा के मसाइब, मेरा दिल है कि वो भी भरपूर अंदाज में ज़्यादा तफसील के साथ मसाइब भी हम पढ़ें। तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आप उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और इस ज़हमत को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। गुजारिश कर रहा हूँ, कल भी इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर पहले आप अगले सफ़ों को पूरा करें, मुकम्मल करें, ताकि बाद में आने वालों के लिए दिक्कत ना हो। अमूमन ये सामने बिल्कुल कोई नहीं बैठता कि कैमरे के सामने वाले जगह, मगर नीचे बैठे हुए तो दिक्कत नहीं होती उनको। एक दफ़ा इंशाल्लाह सामने भी आकर बैठ जाएंगे और अगले सफ़ों को थोड़ा सा अगर और जहमत करें, थोड़ा और आगे हो जाए ताकि बाद में आने वाले दिक्कत ना हो और आसानी से बैठ सकें नज़्म के साथ। फिर ज़रूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम एक दोहराई सिर्फ नामों के हिसाब से उन आठ सिफात की करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप अपने जहनों में भी दोहराएंगे। पहले सिफत इबादुर रहमान की कि वो ज़मीन पर जब चलते हैं तो उनके चाल नर्म होती हैं, गुरूर तकब्बुर से गुरेज करते हैं। जब उनका जाहिलों से सामना होता है, अगर जाहिल उनसे बुरे आवाज में, बुरे अंदाज में बात करें तो वो उनका सलामती का पैगाम देकर रुखसत होते हैं, उनसे उलझते नहीं हैं। तीसरी सिफत वो अपने रब के लिए रातों को क़याम करते हैं, सजदा करते हैं। चौथी सिफत उनके दिल में उनके रब का खौफ है। पाँचवीं सिफत जब वो खर्च करते हैं, इन्फाक करते हैं तो न ही इसराफ करते हैं और न ही बख़ल करते हैं। छठी सिफत शिर्क उनके अंदर नहीं होता, शिर्क का शाइबा तक नहीं होता। अल्लाह के अल्लाह की तौहीद के ऊपर उनका ईमान, उनका एतकाद मजबूत होता है और शिर्क से पाक होते हैं। सातवीं सिफत उनके अंदर कत्ल से, जिस नफ्स को खुदा ने कत्ल करना हराम कर दिया है उसके कत्ल से गुरेज करते हैं। आठवीं सिफत जिना से खुद को बचाते हैं और मुकदमात जिना कल भी अर्ज़ किया, इस गुनाह के जो मुकदमात हैं उनसे भी खुद को महफूज रखते हैं। और आठ नौवीं और दसवीं सिफत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ दो सिफात इस आयत के अंदर बयान हुई हैं। पहली सिफत यह है कि ये गुनाह की महफिलों में शिरकत से परहेज करते हैं। नौवीं सिफत क्या है? गुनाह की महफिल में शामिल होने से गुरेज करते हैं। और दसवीं सिफत क्या है? وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا किरामा। अगर इनका सामना हो जाता है लगव के साथ, किसी फजूलियात के जब इनका सामना हो जाए तो उनसे बड़ी तकरीम के साथ अपना दामन बचाकर उससे हट जाते हैं, यानी ख़ुद को फजूल कामों में मसरूफ नहीं करते, अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। बस इन दोनों सिफात को थोड़ा सा खोल के बयान करके आज आपकी ज़हमत तमाम करेंगे। फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। والذين لا يشهدون الزور، ये लफ्ज जूर जो है ज़े वाव और रे, अब उर्दू के हिसाब से ज़ा कहते हैं अरबी में, जूर का मतलब है हक से मुनहरिफ होना, हक से इनहराफ करना। मजीद जिस जो अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें से एक तोहमत है, झूठ तोहमत, और इसी तरह बेहुदा मौसीकी की महफिल के लिए भी जूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इसी तरह बातिल महफिल जो है उसके लिए भी जूर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی اور دونوں کے اوپر متفق ہیں کہ اس سے یہ دونوں مراد ہیں. ایک تو ہے کہ جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینے سے گریز کرنا. عباد الرحمن کے صفات میں سے یہ صفت ہے, نوعی صفت کیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی یعنی تہمت, یعنی کسی کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے. گواہی دینا, شہادت دینا کہ یہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے, جبکہ در حقیقت وہ گبوں عیب وہ برائی اس شخص کے اندر نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر یہ تہمت لگانا. تو عباد الرحمن کسی پر تہمت نہیں لگاتے. ایک حصہ اس آیت کا, اس کی تفسیر کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ تہمت نہیں لگاتے, یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ گناہ کی محفل میں شریک نہیں ہوتے. اسی لا یشہدون الزور کا مطلب. تو دونوں کو تھوڑا سا ہم کھول کے بیان کریں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. پہلا کہ جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا. سورہ حج کی آیت نمبر 30, سورہ حج ہے قرآن مجید میں, اس کی 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ناپاک بتوں سے اجتناب کرو, بت جو ہیں ناپاک بت ان سے اجتناب کرو, اور جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب کرو. یعنی اگر تم عبد خدا ہو, اگر تم مومن ہو, اگر تم عباد الرحمن ہو, تو پھر جھوٹی گواہی نہیں دو گے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے. امام فرماتے ہیں, اپنے برادر ایمانی پر تہمت لگانے والے شخص کے دل سے, اپنے برادر ایمانی جو اپنے کسی مومن کے اوپر تہمت لگاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی ایسے عیب کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس میں موجود نہیں ہے, اس کے اوپر وہ عیب لگاتا ہے, یہ تہمت ہے. تو جو تہمت لگائے گا اپنے برادر ایمانی پر, سچے امام کہتے ہیں اس کے دل سے ایمان اس طرح سے گم ہو جائے گا جیسے کہ نمک کو پانی میں ڈالیں تو وہ نمک پانی کے اندر جیسے گم ہو جاتا ہے, ایمان اس کے دل سے گم ہو جائے گا, یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے جھوٹی گواہی دینے سے. جھوٹی گواہی دینے سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اور مثال مولا نے دی ہے, نمک پانی میں ڈالیں حل ہو جاتا ہے, کچھ دیر بعد نظر نہیں آتا, ختم ہو جاتا ہے. امام نے جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں, تہمت لگانے والے کے بارے میں, کہ جو اپنے برادر ایمانی پر تہمت لگائے گا اس کے دل سے ایمان گم ہو جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابھی جس حدیث کا میں نے ذکر کیا چھٹے امام کی, اس میں برادر ایمانی کی بات ہو رہی تھی, صاحبان ایمان کی, مومن کی بات ہو رہی تھی. اب اللہ کے نبی کی اس حدیث میں توجہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایسا شخص جو کسی مسلمان کے بارے میں یا کسی کافر ذمی کے بارے میں, کافر ذمی کسے کہتے ہیں, ایسا کافر جو مسلمانوں سے لڑ نہیں رہا, جس نے جنگ نہیں کی, حکومت اسلامی کے اندر رہتا ہے, اپنے کفریہ عقیدے پر باقی ہے, لیکن مسلمان کے خلاف, حکومت اسلامی کے خلاف تلوار نہیں نکالی, لڑا نہیں ہے, جنگ نہیں کی, اسے کافر ذمی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, جو شخص کسی مسلمان یا ذمی کافر یا کسی بھی انسان, اللہ کے نبی نے اینڈ پہ سب کو شامل کر دیا, یا کسی بھی انسان کے بارے میں جھوٹی گواہی دے گا, جو شخص کسی مسلمان کافر ذمی یا کسی بھی انسان کے بارے میں جھوٹی گواہی دے گا, روز قیامت اس کی زبان باندھ دی جائے گی اور وہ منافقین کے ساتھ دوزخ کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوگا. جھوٹی گواہی دینے والا اس قدر سخت ہے, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں, جاب میں, اسکول میں, کالج میں, گھروں کے اندر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دے,
किसी मामले में, किसी केस में, किसी लेन देन के अंदर झूठी गवाही दे दें। अजीज अमन, जो ऐसी झूठी गवाही देगा, चाहे वो किसी काफिर जिम्मी के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो ये झूठी गवाही देने वाला, इसका हश्र क्या होगा? जुबान इसकी बांध दी जाएगी और मुनाफिकीन के साथ फी दर के असफल का है, सबसे निचला तरीन दर्जा, दोजख का सबसे फर्स्ट, यानी हम यूं कहें दोजख का सबसे सख्त एरिया जो है, जहां सबसे सख्त अजाब है, इस झूठी गवाही देने वाले को मुनाफिकीन के साथ मशहूर किया जाएगा। बस इबाद खुदा अब्द रहमान झूठी गवाही नहीं देता, तोहमत नहीं लगाता। अब इसी तरह अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में तवज्जो दो, जरा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपकी सलावत की आवाज बहुत ज्यादा धीमी है, थोड़ा जरा बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स किसी मोमिन या मोमिना पर तोहमत लगाएगा, तोहमत बच्चों ने समझना है, तोहमत का मतलब हम किसी के बारे में उसका कोई ऐसा ऐब बयान करें, उसकी कोई ऐसी बुराई लोगों में बयान करें जो उसमें ना हो, मसलन हम किसी को झूठा कह दें जबकि वो झूठा ना हो, हम किसी को कैरेक्टरलेस कह दें जबकि वो ना हो, हम किसी के बारे में ऐसी गलत बात कर दें जो उसमें ना हो, तो ये तोहमत है। अब अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, जिस किसी ने, जो कोई शख्स किसी मोमिन या मोमिना पर तोहमत लगाए, तो कयामत के दिन इस शख्स को आग के ढेर के ऊपर रखा जाएगा, यानी इसको आग के ऊपर रखेंगे, आग के ऊपर जलाएंगे इसको। कब तक? ये उस आग में जलता रहेगा जब तक कि उस तोहमत से बरी नहीं हो जाता, जब तक कि उस तोहमत से बरी ना हो जाए। पूछा यार रसूलल्लाह उस तोहमत से बरी कैसे होगा? कहा जिस पर तोहमत लगाई थी जब तक वो राजी ना हो जाए, वो राजी हो जाए तब ये उससे बरी होगा। अगर वो तोहमत लगाने वाला राजी ना हुआ तो फिर ये उस आग के ढेर के ऊपर पड़ा रहेगा, उस अजाब में मुब्तला रहेगा। बस ऐसा मोहतरम, किसी के बारे में भी, यानी इबाद और रहमान की सिफत क्या है, वो किसी के बारे में भी राय देते वक्त, किसी के बारे में भी बताते वक्त, ऐसा नहीं होता कि अंदाजे से बता दे या तस्दीक कर दे, ताइद कर दे, तोहमत नहीं लगाता कभी। बाज़ लोग गीबत करते वक्त, ख़वातीन का एक जुमला होता है गीबत करते वक्त, कि जब उनसे कहा जाता है गीबत ना करें तो वो कहते हैं हम सच बोल रहे हैं। किसी के अंदर मौजूद ऐब को, किसी के अंदर मौजूद नक्स को, अगर उसके अंदर मौजूद है नक्स, उसको अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें तो ये गीबत है। मौजूद नक्स को बयान करना, किसी के अंदर मौजूद बुराई को दूसरों के सामने उसके पीठ पीछे बताना, ये गीबत है। और किसी की ऐसी बुराई जो उसमें ना पाई जाती हो उसको बयान करना तोहमत है, और तोहमत सजा आग के ढेर पर रहेगा जब तक कि तोहमत से बरी ना हो जाए। और तोहमत से बरी कब होगा? जब जिस पर तोहमत लगाई थी वो राजी हो जाए, वो कहे कि मैं राजी हूं या अल्लाह इसको माफ कर दे, तब जाकर। लिहाजा वल्लदीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते, तोहमत नहीं लगाते। एक हदीस, एक रवायत, अल्लाह के नबी ने मौला मुत्तकियान को, मौला अली को बताते हुए कि मौला अली ने सवाल पूछा, या रसूलल्लाह काफिर की जानकनी किस तरह से होती है, यानी जो काफिर होता है उसकी रूह निकलते वक्त क्या होता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा, या अली जब काफिर की जान निकलने का वक्त आता है तो मलकुल मौत आग की सीख लेकर आता है, सीख होती है जो आग वाली, उस आग की सीख के जरिए से उसकी जान निकालता है, और जब इसकी रूह निकलने वाली होती है तो जहन्नम चिंगाड़ता है, इसको जहन्नम की आवाज़ आती है कि जब इसने जो मरने के फौरन बाद जो जहन्नम जाना है, तो ये उस जानकनी के आलम में जहन्नम की चिंगाड़ की आवाज़ को सुनता है। जब अल्लाह के नबी ने काफिर की जानकनी का बताया तो मौला अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या इस तरह की जानकनी आपकी उम्मत में से भी किसी की होगी, उम्मत मोहम्मद में से भी किसी की जानकनी काफिर की तरह होगी कि आग की सीख से जिसकी रूह निकाली जाए और वो जहन्नम की चिंगार को सुने उसी आलम में। तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, मेरी उम्मत में से तीन अफराद ऐसे होंगे कि जिनकी जानकनी इसी काफिर की तरह की होगी। तीन अफराद की, पहला जालिम हुक्मरान की, वो हाकिम कि जो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो लेकिन हाकिम जालिम हो, जालिम हाकिम हो तो उसकी जान उसी तरह कब्ज होगी, उसकी रूह उसी तरह कब्ज होगी। दूसरा कहा जो नाहक माल यतीम को खाए, जो नाहक माल यतीम खाएगा उसकी जानकनी भी इसी तरह से होगी। और तीसरा अल्लाह के नबी ने यही कहा जो झूठी गवाही देगा, जो तोहमत लगाएगा उसकी जानकनी भी काफिर की तरह होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, अब ये तो है उस अंदाज में अखलाकी तौर पर, शरीयत में हद मौजूद है, हद कज़फ कहते हैं इसको, शरीयत में हद मौजूद है तोहमत के ऊपर, झूठी गवाही के ऊपर हद है, हद जारी होती है। वाज़ह कुरान की आयत है और उसी के ज़िमन में फिर जो फतवा मौजूद है, अगर कोई शख्स किसी पाक दामन औरत पर तोहमत ज़िना लगाए, अगर कोई शख्स किसी पाक दामन औरत पर ज़िना की तोहमत लगाता है, और अब अगर इसने तोहमत लगाई है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी है कि इसको साबित करने के लिए चार गवाह लाए, चार गवाह लाए। अगर ये चार गवाह नहीं पेश कर सका तो इस तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे, तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। अगला फतवा सुनिएगा, अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसने चार दफ़ा तोहमत लगाई हो, हर दफ़ा तोहमत पर 80 कोड़े हैं, अगर चार दफ़ा किसी पर तोहमत लगाई हो और 80 कोड़े खाए हों, गवाह पेश ना कर सका हो, तो पांचवी दफ़ा तोहमत लगाने पर इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर इसने पांचवी दफ़ा तोहमत लगाई और साबित ना कर सका तो फिर शरीयत में हुक्म क्या है, इसको कत्ल कर दिया जाएगा, इसको फांसी देंगे, इसके सजाए मौत है इसके लिए। फिक्र के अंदर भी तोहमत लगाना, झूठी गवाही देना इसकी इस कदर सख्ती है। लिहाजा अज़ान मोहतरम, तोहमत की एक और शक्ल भी, अभी तक जो मैंने शक्ल बताई है इसके बारे में हम सब में से अक्सर जो हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें, शुक्र है हम तो तोहमत वाले में आ ही नहीं रहे। तो अब तोहमत की अगली किस्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिसका शिकार माशरे के अक्सर लोग होते हैं, लेकिन है तोहमत ही, वो वाकया मौजूद है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सुनना चाहते हैं तो ज़रा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। गाली देना भी झूठी गवाही में आता है, गाली देना झूठी गवाही में आता है, गाली देना तोहमत है, क्योंकि अगर आप किसी को गाली देते हैं उसका मतलब ये हुआ कि आप तोहमत लगा रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं है। अब वाकया सुनिए और फिर हम जो मासूमीन के साथ हमारी मोहब्बत है, हमारी समीमियत है, हम जो इश्क अहले बैत से सरशार हैं, हम जो इमाम की मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं, इस वाकये के अंदर मेरे और आपके लिए बहुत अहम और गहरा पैगाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम का एक दोस्त, इमाम का एक मानने वाला, लेकिन इमाम के साथ उसकी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, ज़्यादा टाइम इमाम के साथ रहता था, हर वक्त साथ रहता था, ज़्यादा टाइम इमाम के साथ था। एक दिन इमाम के साथ बैठा हुआ था तो इमाम का एक गुलाम था हिंदुस्तान का, हिंदी गुलाम था, तो किसी काम के लिए भेजा था, उसको कुछ देर हो गई। जब वो आया तो इमाम के इस साथी ने, ये जो इमाम का साथ ज़्यादा टाइम गुजारता था, इसने उस गुलाम को आवाज़ दी, ए जिना ज़ादे कहाँ रह गए थे। जो ही इसने ये कहा, इमाम छठे इमाम ने इसके कमर पे ज़ोर से हाथ मारा, اور کہا تم نے اس پر تہمت لگا دی، یہ جو تم نے کہا ہے کیا تم اس بات کو ثابت کرتے ہو، کیا تم اس بات کو ثابت کر سکتے ہو؟ پھر امام نے جملہ کہا، امام نے کہا میں تمہیں متقی سمجھتا تھا، تم تو بے تقویٰ ہو کہ جو اس طرح سے تم نے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے، اس نے کور کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہتا ہے مولا یہ ہندوستان کا ہے، سندھ کا ہے، اور وہاں سارے مشرک ہیں، تو اس کی ماں بھی مشرکہ تھی، تو مشرکوں کے ہاں کہاں شادیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ تو اسی سے ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، ہر قوم میں شادی بیاہ کا اپنا دستور اور قانون موجود ہے، تو یہ اپنے اسی قوم اور اپنے اسی دستور کے مطابق شادی کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ پھر امام نے اس سے کہا، اب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے نظر مت آنا۔ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا امام نے، یہ جس کے منہ سے گالی نکل رہی ہے۔ اے عزیز من، اگر گالی دینے کی عادت ہے، اگر آپ کے منہ سے گالی نکلتی ہے تو چھٹے امام اپنے پاس نہیں رکھنے والے۔ یہ تو ایک عرصے سے امام کے ساتھ رہتا تھا، جب اس نے امام کے غلام کو گالی دی ہے تو امام نے اس کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ اور اگلا جملہ جو میں نے روایت میں پڑھا ہے، کہتے ہیں پھر امام عمر بھر دوبارہ نہیں ملے ہیں اس سے، دوبارہ اس سے نہیں ملے امام۔ بس گالی دینا کسی کو تہمت ہے، اور بعض لوگ مارکیٹ کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، آس پاس کے ماحول اور معاشرے کے ساتھ زبان پہ چڑھ چکا ہوتا ہے۔ ایک جاننے والے تھے، پھر پوچھا کہ آپ گالی زیادہ دیتے ہیں، گریز کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں اب زبان پہ چڑھ چکی ہے، اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ نا عزیز ہے، یہ اس قدر سخت ہے کہ امام کریم ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، لیکن یہ موضوع اتنا سخت ہے کہ امام نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ بس اگر میں اور آپ، خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کی عادت بن گئی ہو یا گالی دیتے ہوں، تو خود کو اس سے نکالیں، کیونکہ آئمہ اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو نہیں رکھتے کہ جو گالی دینے والے ہوتے ہیں۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ اس کا دوسرا حصہ، یہاں تک تو تھا تہمت اور جھوٹی گواہی کے عنوان سے، والذین لا یشہدون الزور۔ یہ اگلا حصہ اس کا ہے کہ گناہ کی محفل میں عباد الرحمن حاضر نہیں ہوتے، گناہ کی محفلوں میں نہیں جاتے۔ پتہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہونی ہے وہاں پر عباد الرحمن نہیں جاتے۔ قرآن مجید کی آیات میں یہ مفہوم موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کچھ لوگ مل کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا جب تک کہ وہ اپنا موضوع تبدیل نہ کریں۔ وجہ بتائی قرآن نے، ہی وجہ بتائی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ رہے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے، اس صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ بعض لوگ اپنا تقوی آزمانے کے لیے گناہ کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ شہید متحری کہتے ہیں اپنا تقوی نہ آزمائے کریں کہ میں ذرا چیک کروں کہ میں گناہگار ہو جاتا ہوں یا بچ جاتا ہوں، اس طرح کے اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو۔ اب حدیث سماعت فرمائے، چھٹے امام کی، امام فرماتے ہیں مومن کے لیے کسی ایسی محفل میں شرکت مناسب نہیں جس میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو، اور وہ مومن اس محفل میں تغیر لانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں الی المنکر کے لیے جانا پڑتا ہے کہ خود جائیں اور اس محفل میں، اس گناہ کے محفل کو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں جا کر لوگوں کو بچائیں گناہ سے۔ اگر تو اس عنوان سے ہے اور آپ تغیر لا بھی سکتے ہیں اور آپ کر بھی سکتے ہیں، پھر تو نہیں رکاوٹ۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اگر اتنی پاور نہیں ہے کہ جائیں اور گناہ سے روکیں، یا اتنی نہیں سنی جائے گی، تو پھر مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کسی محفل میں جائیں۔ خود کو اس محفل سے دور رکھنا ہے۔ اب ایک موضوع، آہستہ آہستہ معاشرہ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، منصور دوانیقی، اس نے اپنے ایک بچے کی کسی رسم کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا کھانے کا، اور چھٹے امام کو بھی دعوت دی کھانے کی۔ امام نے انکار کیا لیکن منصور نے مجبور کروایا اور امام اس دعوت میں امام کو جانا پڑا. کھانے کے لیے دسترخوان سجایا گیا اور جب کھانے کی چیزیں رکھی گئیں تو اس میں دیکھا تو شراب کے برتن بھی لا کے رکھے گئے, ابھی خالی برتن رکھ رہے ہیں کہ جس میں بعد میں شراب. جو ہی برتن امام نے دیکھے امام انتہائی غیظ و غصے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے لگے, اور باقی جو اہل محفل تھے ان کی طرف منہ کر کے امام نے کہا ملعون من جلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر, ایسا شخص ملعون ہے جو کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو. ملعون ہے وہ شخص کہ جو ایسے کسی دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو. رہبر معظم جس وقت ایران کے صدر تھے ایک ملک کے دورے پر گئے, اور یہ صدر صدارتی حیثیت سے ہی دورے پر گئے تھے, اور پھر اشائیہ دیا گیا اس اگلے ملک کے صدر کی طرف سے, اشائیہ کی محفل یعنی ایرانی صدر آیت اللہ خامنائی کے لیے اشائیہ دیا ہے. ظاہر اس میں بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے, وزراء, مشیر. جب رہبر معظم اس محفل میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹیبلیں ہیں ان کے اوپر شراب بھی رکھا ہوا ہے. اندر داخل ہوئے جو ہی شراب نظر آئے تو رہبر معظم واپس پلٹ گئے, صدر تھے ایران کے. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے یا ڈپلومیٹس کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہے. رہبر معظم وہاں سے واپس پلٹ گئے اور احتجاج کیا اور اس محفل میں نہیں گئے دوبارہ. بس یاد رکھیں, اگر کسی محفل میں, کسی دسترخوان پر, کسی دفتر میں, کسی پارٹی کے اندر شراب رکھا جا رہا ہو تو اس میں جو شامل ہوگا وہ ملعون ہے, بے شک نہ پی رہا ہو. ملعون مطلب جس پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برسے, اسے ملعون کہا جاتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. پس اس کی آخری شک جو ہے قول الزور کی, امام باقر علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ مولا یشہدون والذین لا یشہدون قول الزور والذین لا یشہدون الزور, پوچھا امام سے کہ یہ زور کیا ہے. تو پانچ امام نے کہا جہاں یہ تہمت ہے, جہاں یہ گناہ کی محفل ہے, وہاں ایک خاص اس کا معنی بھی پانچوں امام نے دیا. وہ کیا ہے؟ امام نے کہا بیہودہ موسیقی کو زور کہا جاتا ہے. گانا زور ہے اور عباد الرحمن زور سے دور رہتا ہے. پس میں اور آپ اس عشرے کے اندر جوان یہاں پر ہیں, اگر ہم آمادہ ہیں کہ اپنے آپ کے اپنے اندر عباد الرحمن کی صفات کو پیدا کریں تو لا یشہدون الزور, تہمت نہیں لگائیں گے کسی پر, گناہ کی محفل میں نہیں جائیں گے اور بےہودہ موسیقی سے خود کو محفوظ رکھیں گے, خود کو بچائیں گے. بس یاد رکھیں, میں نے تفسیر میں یہ پڑھا اللہ نے کان کو بنایا اور پھر کانوں کے بارے میں فرض یہ ہے انسان پر, کان کے بارے میں فرض یہ ہے کہ اپنے کان کو حرام سے محفوظ رکھنا ہے, اپنے کان کو حرام سے بچانا ہے, اپنے کان کو, اپنے کانوں میں حرام کو داخل ہونے نہیں دینا. حرام چاہے جھوٹ ہو, چاہے غیبت ہو, چاہے بےہودہ موسیقی ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ نویں صفت ہے. پس نویں صفت عباد الرحمن کی کہ جب قول زور, جھوٹی گواہی سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں, تہمت لگانے سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں, گناہ کی محفل میں نہیں جاتے, گناہ کی محفل سے خود کو دور رکھتے ہیں اور بےہودہ موسیقی سے خود کو دور رکھتے ہیں, یہ نویں صفت ہے عباد الرحمن کی. دسویں صفت جو اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے بیان کیا, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا ہے, ان کے سامنے کوئی لغو آتا ہے, کوئی فضولیات آتی ہیں تو یہ اس سے گزر جاتے ہیں تکریم کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ, بزرگانہ انداز میں اس سے گزر جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کو کھولیں گے, ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. لغو کا مطلب کیا ہے؟ لغو کہتے ہیں بے مقصد اور فضول سرگرمی کو. یعنی آپ کوئی انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو कि जिसका कोई मकसद ना हो, यानी उस काम का कोई अंजाम नहीं है। काम तो कर रहा है लेकिन उस काम का कोई नतीजा नहीं है, बेमकसद, कोई हदफ नहीं, किसी मकसद तक पहुंचने वाला नहीं है। लगव कहते हैं उस काम को, लगव। की आजकल मिसाल जो बच्चों को, बड़ों को, जवानों को जल्दी समझ में आ जाएगी, ये जो पबजी खेलने वाले हैं, ये जो मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं और गेम्स खेलने में अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं, ये लगव है। लगव है, ये लगवियात है, फजूलियात है, बेहूदा होना, बेहूदा सरगर्मी, बेहूदा सरगर्मी में मुब्तला होना, ये भी लगव है। बस इबादुर रहमान की सिफत है कि लगव जब सामने आ जाता है तो ये बुजुर्गाना अंदाज में उससे गुजर जाते हैं। फजूलियात का मतलब क्या होता है कि इंसान अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम ज़ाया करना किस चीज़ को कहते हैं? फ़र्ज़ करें आप कोई बामकसद काम अंजाम दे रहे हैं तो जितना वक्त आप उसमें लगाएं, कोई ये नहीं कहेगा कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में जाके क्लास पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आप क्लासेस पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये 6 घंटे आपने ज़ाया कर दिए हैं। आप मार्केट में जाके अपनी दुकान पे बैठते हैं, कारोबार करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे वहाँ ड्यूटी देते हैं, बैठते हैं, कोई नहीं कहेगा कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। टाइम ज़ाया होने का मतलब क्या है? लगव काम, ऐसा काम कि जिसका नतीजा नहीं है, वक्त का ज़ाया करना। इबादुर रहमान की सिफत ये है कि वक्त ज़ाया नहीं करता, टाइम नहीं ज़ाया करता, वक्त बर्बाद नहीं करता अपना। बस याद रखें ये सिफत, जैसा कि इस आयत के अंदर वइज़ा मर्रु बिल्लग्व मर्रु किरामा, कुरान मजीद में दीगर जगहों पर भी इसी तरह का मफहूम बयान हुआ है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3 में ईमान वालों की निशानियां बताते हुए, यानी जिनके दिल में ईमान है, मोमिन की निशानी बताते हुए अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लदीन हुम अनिल लग्व मुरिदून, कौन है साहिबान ईमान? जो लग्व से, फजूलियात से इज्तनाब करने वाले हैं, जो बेहुदा और फजूल कामों से इज्तनाब करने वाले हैं, ये साहिबान ईमान है। इसी तरह सूरह कसस की आयत नंबर 55 में जो हक के तलाश करने वाले होते हैं, जो हक के तरफदार होते हैं, जो हक को पसंद करने वाले होते हैं, उनकी निशानियां बताते हुए क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वइज़ा समिउ लगवा अअरिदू अन्हु, कि जब उनके सामने कोई लगव आता है, जब कोई लगव बात सुनते हैं, कोई फजूल बात सुनते हैं, तो वो अपने आप को उससे बचाते हैं, इज्तनाब करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसमें वारिद नहीं होते, उसमें पढ़ते नहीं हैं। रसूल खुदा के कि लोगों में सबसे ज़्यादा बाफजीलत इंसान वो है जो बेमानी काम को तर्क कर दे, यानी लोगों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो उस काम को तर्क कर दे जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई माना नहीं है, उस काम को तर्क कर दे। आजकल सबसे ज़्यादा जिसमें हम मुब्तला हैं, जिसकी वजह से, वो मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल का इस्तेमाल इस कदर ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में कि इस वक्त खैर एक लाजमी जुज़ तो बन चुका है, हत्ता कि बाज़ लोग बैतुलखला में भी मोबाइल के बगैर नहीं जाते। शायद कोई ऐसी अहम कॉल आ जाए कि अगर वो बैतुलखला में जितनी देर हैं उस देर में अगर कोई ऐसी कॉल आ गई कि जिसको सुन नहीं पाए तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम सारा ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। खाने के टाइम भी मोबाइल, हत्ता नमाज के दौरान भी मोबाइल होता है, और बाज़ दिन के मोबाइल ट्यून में गाना लगा होता है, एम जोहर की नमाज के दरमियान में गाना शुरू हो जाता है। एक आलिम दीन बता रहे थे कि हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, दौरान तवाफ़ वो कोई इंडियन गाना शुरू हो गया, खाने काबे के करीब किसी की जेब में मोबाइल था और उसमें गाना लगा हुआ था। मोबाइल इस वक्त एक ऐसा मौजू है कि जिसको हम लगव कह सकते हैं, जिसने हमें लगवियात में मसरूफ़ कर दिया। किसी अहम काम के लिए, फ़र्ज़ करें फ़ोन सुनने के लिए या कोई ख़बर देखने के लिए या अपनी मालूमात में इजाफे के लिए या किसी भी अहम अमर को अंजाम देने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने से मना नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे। एक जुमला अमूमन कहा जाता है, कहते हैं ना आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूछा है ना आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, कहा आपको किसने कहा कि मैं मोबाइल को इस्तेमाल करता हूँ? कहा मोबाइल मुझे इस्तेमाल कर रहा है, अगर मैं मोबाइल को इस्तेमाल करूँ तो मेरे दिन में कोई 1-2 घंटे मोबाइल के साथ गुजरे, और तो मोबाइल मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं 24 घंटे मेरे ऊपर। लिहाजा ये कि जब वइज़ा मर्रू बिल्लग्व, जब किसी फजूल चीज का सामना करेंगे तो मर्रू किरामा, तो बुजुर्गाना अंदाज में उससे गुजर जाएंगे। याद रखिएगा, जिसने अपनी जिंदगी के औकात को, टाइम को, वक्त को अगर मैनेज नहीं किया है, अगर मुनज्जम नहीं किया है, तो याद रखें अब्दुर्रहमान बनना, इबादुर्रहमान में शामिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इबादुर्रहमान की निशानियों में से क्या है, टाइम नहीं जाया करते हुए, फजूलियात में नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं होगा कि किसी फजूल काम में लगें और चंद घंटे उसमें गुजार दें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, टाइम अपना मैनेज करके चलते हैं। फर्ज करें किसी को अगर टाइम दिया हो मुलाकात का कि आपसे 2 बजे मुलाकात होगी, तो 2 बजे का मतलब 2 बजे होता है, जिस तरह हमारी मजलिस का टाइम 9 बजे है, तो 9 बजे का मतलब 9 बजे है, 9 बजे का मतलब 9:15 नहीं है, 9 बजे का मतलब 9:01 भी नहीं है, 9 बजे का मतलब 9 बजे। लेकिन वक्त की कदर, वक्त की अहमियत इबादत खुदा के पास होती है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन की एक मशहूर हदीस है, नहजुल बलागा में है, कलिमात अकिसार, कलिमा नंबर 390। उसमें मौला अली ने एक इंसान को अपने टाइम को किस तरह से तकसीम करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, मौला अली ने बयान की है। पूरी तवज्जो से समाज फरमाए, जवान भी, बुजुर्ग भी, खवातीन सब, अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है। इमाम फरमाते हैं मोमिन के शब रोज के औकात 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं, मोमिन के शब रोज के औकात 3 हिस्सों में तकसीम होते हैं, 3 कामों के लिए उसके शब रोज वक्फ होते हैं। एक हिस्सा अपने दिन का, अपने वक्त का, अपने एक दिन के टाइम का एक हिस्सा वो अपने उमूर की इसलाह के लिए और तलाश माश के लिए वक्फ करता है, काम करता है, ड्यूटी देता है। स्टूडेंट है तो पढ़ने के लिए जाता है, कारोबारी है तो मार्केट जा रहा है, अगर जॉब मुलाजमत पेशा है तो अपनी जॉब के लिए जा रहा है, तो जिंदगी का एक हिस्सा काम के लिए, कस्ब माश के लिए। दूसरा हिस्सा आराम और इस्तराहत और हलाल लज्जतों से इस्तेफादे के लिए। बाज लोग पहले हिस्से को इतना टाइम दे चुके होते हैं, उनके पास उस हलाल लज्जत से इस्तेफादे का मौका ही नहीं मिलता, खाने का भी होश नहीं होता, सारे दिन मेहनत किस लिए कर रहे हैं, ताकि आसूदा जिंदगी गुजार सकें, लेकिन रूटीन क्या बनाई है, ना आराम मयसर आ रहा है, ना नेमात जो मौजूद है उनसे इस्तेफादा कर पाते हैं, ना बच्चों को वक्त दे पाते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो हफ्ते बाद अपने बच्चों से जिनकी मुलाकात होती है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रूटीन इस तरह की बना ली है कि उनको अपनी इसलाह के लिए कोई इकदाम करने का मौका ही नहीं मिलता। मौला अली मोमिन के कामों को एक दिन के 24 घंटे को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, एक हिस्सा काम के लिए, एक हिस्सा है काम के लिए, बस उसी में काम है, ऐसा नहीं होगा कि बाकी जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी काम की बात हो रही हो, बच्चों के साथ बैठा हो और मोबाइल पे सौदा हो रहा हो, बच्चों के साथ बैठा है उनका टाइम है, उनके साथ बैठने का टाइम था, उनके साथ खेलने का टाइम था, फैमिली को टाइम देने का था, खाने के लिए सबके साथ अपने खानवादे के साथ बैठे हैं उस वक्त भी लगे हुए हैं कि फलां काम ऐसे करना है, फलां काम ऐसे करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें, मैं और आप अगर अपनी ज़िंदगी में गौर करें, मैंने अपने 24 घंटे को, अपने औकात को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रंग किस चीज़ का है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा काम मुझ पर गालिब आया हुआ है कि मैं हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो अजीजान मन, याद रखिएगा, किसी के ऊपर अगर ऐसा मसला है तो ज़रा दिक्कत कीजिएगा, ये मरज़ है, ये मरज़ है, याद रखिएगा। अपने आप को मैनेज करना है, अपने 24 घंटे का, अपने दिन का एक हिस्सा कस्ब मुआश के लिए, दूसरा हिस्सा इस्तराहत के लिए, हलाल लज्जत से इस्तेफादा करना उसके लिए, और तीसरा हिस्सा इबादत के लिए, खुदा से राज व नियाज और अपने और खुदा के मामलात की इस्लाह के लिए। ये तीन हिस्से होते हैं एक दिन के 24 घंटे के। अब मैं और आप चेक करें, हमने अपने 24 घंटों को कैसे तकसीम किया हुआ है, या तकसीम किया ही नहीं है। जैसे गाड़ी चल रही है, चल रही है, हत्ता कि फुर्सत, लोगों को फुर्सत नहीं होती कि अपनी सेहत के बारे में भी फिक्र कर सकें, इतनी फुर्सत भी नहीं होती। फुर्सत कब मिलती है सेहत के बारे में फिक्र करने की? जब शुगर हो जाता है, उसके बाद जाके फुर्सत मिलती है, या पहला दिल का दौरा पड़ जाए तब जाके अंदाजा होता है कि नहीं, अब सेहत का भी कोई ख्याल करना है। सब कुछ दाव पे लगा दिया पैसे कमाने के लिए, सेहत भी दे दी, बच्चों की तरबियत से भी मुंह मोड़ लिया, खानवादे और घर को जो टाइम देकर एक बेहतरीन पुरसकून जगह बना ली थी दुनिया के अंदर कि जहाँ जाकर सुकून से रह सके, वो भी हाथ से दे दिया। सारी तवज्जो दी दौलत कमाने पर, कमा कमा के, जमा हो के, फिर जब बीमारी ने सर उठाया तो फिर उसी दौलत को उसी बीमारी के इलाज के ऊपर लगाने लगा। याद रखिए, कम अकली है ये, न ये साहिबान अकल की निशानी है, न ये साहिबान ईमान की निशानी है, और न ही ये इबादुर रहमान की निशानी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखें, जिसका टाइम ज़ाया होता है ना फजूल कामों में, टाइम का ज़ाया करना कोई छोटा गुनाह नहीं है, छोटा गुनाह नहीं है, मुतवज्जे रहें, ये जहन्नम तक पहुंचाने वाला गुनाह है। कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत बयान करने लगा हूँ, सूरह मुदस्सिर की आयत है, जिसमें अहले जन्नत को अल्लाह ताला मौका देगा कि तुम अहले जहन्नम से सवाल कर सकते हो, कोई बीच में कोई खिड़की या किसी तरह से रब्ता हो जाएगा, तो ये अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल पूछेंगे, मा सलककुम फिस सकर, क्या वजह बनी कि तुम जहन्नम में गए हो। जहन्नमियों से सवाल पूछा जा रहा है, किस काम की वजह से तुम जहन्नम में पहुंचे। तो उन्होंने कहा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहली वजह बताई, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में आए। दूसरा, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे इसलिए जहन्नम में आए। तीसरी सिफत क्या बताई, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और फजूल कामों में लगने वालों के साथ मिलकर हम भी फजूल काम किया करते थे, अपना वक्त बर्बाद करते थे। और चौथी, वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, हम कयामत के दिन को झुठलाते थे। ये चार काम थे जिसकी वजह से हम जहन्नम में पहुंच गए। टाइम का ज़ाया करना, वक्त का बर्बाद करना, जो अपने काम को, अपने वक्त को फजूल कामों में गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी शैतान की चरागाह बन जाती है। चौथे इमाम की दुआ है, सैफ़े सज्जादे की दुआ नंबर 20, इमाम फरमाते हैं, दुआ करते हैं, उम्र के ज़्यादा होने या कम होने के बारे में इमाम की दुआ है। चौथे इमाम कहते हैं, मियार दे दिया मौला ने, खुदाया अगर मेरी ज़िंदगी तेरी इताअत में गुजरनी है, अगर मेरी ज़िंदगी तेरी बंदगी में गुजरनी है, तो फिर मेरी ज़िंदगी को तूल दे दे, मुझे तूल उम्र अता कर दे, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी शैतान की चरगाह बनने वाली है तो तू मुझे एक लम्हे के लिए भी मज़ीद इस दुनिया में न रख, एक लम्हा मज़ीद इस दुनिया में न रख, अगर शैतान की चरगाह बनने वाली है ज़िंदगी तो। बस जजान मोहतर मुतवज्जे रहें, अपने टाइम को मैनेज करें, इबादुर रहमान मैनेज करके चलते हैं टाइम को, और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। किसी ने अमीर उल मोमिनीन से सवाल किया कि हम अपने वक्त का हिसाब किस तरतीब पे रखें, मतलब तरतीब से मुराद घंटे पे रखें, आधे घंटे पे, मिनट पे रखें। मौलाए मुत्तकियान ने जो मेयार दिया यानी वक्त का हिसाब, यानी मैं चेक करना चाहता हूँ ना कि आज मैंने 24 घंटे में से कितना वक्त ज़ाया किया है। अब हो सकते हैं आप लोगों के अपने अपने मेयारात हो, कोई हो सकता है घंटों में चेक करें, मैंने आज 24 घंटे में से 7 घंटे ज़ाया कर दिए, या कोई हो सकता है मिनटों में उसको शुमार कर रहा हो। अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि हम अपने वक्त का हिसाब किस इकाई पर करें, तो मौला कहते हैं सांस पर करो। सांस, कितनी सांसें तुमने अल्लाह की इताअत में गुजारी हैं और कितनी सांसें उसकी नाफरमानी में गुजारी हैं। सांस पर मेयार बरतना है, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर प्रैक्टिस करनी होगी। अगर फ़र्ज करें कोई इंसान, या आज हो सकता है मजलिस से आप अज़्म व इरादे लेके जज्बात के आज के बाद में आके एक सांस का भी हिसाब रखूँगा, तो मुश्किल हो जाएगा। पहले मरहले में मुश्किल है, तरतीब से आ जाए। अगर आप दिनों के दिन ज़ाया कर देते हैं तो उसको ज़रा कम कर दें, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर करें। अपने आप को घंटे पर रख कर शुरू करें, एक एक घंटे के साथ, कि मैं अपनी ज़िंदगी के घंटों का हिसाब रखूँगा और ज़ाया नहीं होने दूँगा। घंटे से फिर आपने आना है मिनट के ऊपर, कि मिनट ज़ाया ना हो। अगर मिनटों तक पहुँच गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे में अमीरुल मोमिनीन के दिए हुए पैमाने तक पहुँच जाएंगे। फिर इंसान अपनी सांसों का भी हिसाब रखता है, कितनी सांसें अल्लाह की इताअत में ली हैं और कितनी सांसें नाफरमानी परवरदिगार में ली हैं। बस ऐज़ान मोहतरम, 9वीं और 10वीं सिफत इबादुर रहमान तोहमत नहीं लगाते, 9वीं सिफत है। इबादुर रहमान गुनाह की महफिल में शामिल नहीं होते, इबादुर रहमान बेहुदा मौसीकी से लुत्फंदोज़ नहीं होते। इबादुर रहमान के नज़रिया नहीं है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, या अपने लिए कोई ऑप्शन निकाल के कुछ न किसी तरह की बेहुदा मौसीकी से इस्तेफादा करना शुरू करें, ना। इबादुर रहमान की सिफत है वल्लज़ीन ला यशहदूना ज़ूर, दूर रहते हैं, तोहमत से भी दूर रहते हैं, महफिल गुनाह से भी दूर रहते हैं, और बेहुदा मौसीकी से भी दूर रहते हैं। और अगली सिफत क्या है, वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, फजूलियात का जब सामना होता है, लग्व का जब सामना होता है, फजूल काम, वक्त बर्बाद करने वाला काम, तो ऐसे कामों में नहीं पड़ते, अपने टाइम को बचाते हैं और अपने टाइम को मैनेज करते हैं। और अमीरुल मोमिनीन ने जो तीन हिस्सों में तकसीम किया है, इसी के ऊपर अपने टाइम को तकसीम करें। अगर इस पर करेंगे तो फिर आप देखेंगे आपके बच्चों की तरबियत भी बेहतर हो जाएगी, आपके घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी पुरसकून भी हो जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। वरना ये दौड़ धूप लगी रहेगी और एक अरसे के बाद पता चलेगा कि आगे बढ़ने के बजाय एक दायरे के गिर्द ही चक्कर लगाते रहे हैं, और अपने तय यही समझ रहे थे कि बहुत बड़ा फासला तय कर लिया है, उधर ही रहेंगे। बस अज़ान मोहतरम, जवानों के लिए एक पैगाम देकर जिक्र मसाइब की तरफ बढ़ता हूँ। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व, अगर लग्व सामने आ जाए, लग्व उनके सामने आ जाए, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, कोई हदीस देख रहे थे, या कोई पोस्ट देख रहे थे, कोई मसाइब सुन रहे थे, कोई मजलिस सुन रहे थे, किसी दर्स का क्लिप सुन रहे थे, ऊपर किया तो फौरन ही लग्व सामने आ गया, फौरन ही कोई फजूल चीज़ सामने आ गई, कोई गाना आ गया, कोई डांस आ गया, कोई गलत चीज़ सामने आ गई, तो अब क्या होगा। इबादुर रहमान है तो क्या करेंगे। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, बुजुर्गाना अंदाज में उसको ऊपर कर देंगे, या एक और काम करें जो फेसबुक में अगर वो आपके सामने हो, उसके ऊपर ऑप्शंस निकालें और उसको हाइड कर दें, उसको छुपाएं, कहीं ये मुझे नज़र नहीं आना चाहिए। तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रम की 8 तारीख और 8 मुहर्रम हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब मनाया जाता है। चंद एक हज़रत अब्बास के बारे में बाज़ बातें ऐसी की जाती हैं कि जो किसी तौर दुरुस्त नहीं है, गलत है, जैसे बाज़ लोगों के अंदर या बाज़ औक़ात जोश खिताबत में किसी ने स्टेज से ये कह दिया हो, ऐसी बातें की जाती हैं, सुनने में आता है कि जब खयाम लगाए थे पानी के करीब और जब उनकी तरफ से आया कि खेमों को हटाना है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि खेमे हटा दें, तो हज़रत अब्बास जलाल में आ चुके थे और खेमे हटाने पर तैयार नहीं हुए, यहाँ तक कि हज़रत ज़ैनब को आकर हज़रत अब्बास के गुस्से को ठंडा करना पड़ा और उनके कहने पर खेमे हटाए। ये तोहमत है हज़रत अब्बास के ऊपर, ये तोहमत है। हज़रत अब्बास की ज़ियारत में एक जुमला है, लान अल्लाह मन क़त्लका बिल अईदी वल अलसुन, अल्लाह की लानत हो हज़रत अब्बास के कातिलों पर, उन कातिलों पर जिन्होंने अपने हाथों से उनको कत्ल किया और उन पर जिन्होंने अपनी ज़ुबानों से उनको कत्ल किया। ज़ुबान से कत्ल करने वाला कातिल कौन होता है? जो शख्सियत कुशी करता है, जो ऐसी बात करता है कि जो उनमें मौजूद ना हो। अब्बास मुतीए महज है अपने इमाम का। क्या पढ़ते हैं हम ज़ियारत में? अस्सलामु अलैका अय्युहल मुतीउ लिल्लाहि वलि रसूलिही वली अमीरिल मुमिनीन वलिल हसन वल हुसैन, सलाम हो उस पर कि जिसने इताअत की अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अमीरुल मोमिनीन की, इमाम हसन की और इमाम हुसैन की, इताअत की है। खयाम पानी पर लगाए, उन्होंने पैगाम दिया कि खेमों को पानी से दूर ले जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि खेमों को दूर ले जाएं। हज़रत अब्बास ने कोई जुमला नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं, हुक्म इमाम है, खेमों को दूर ले गए। जनाब ज़ुहैर इब्ने क़ैन ने यहाँ पर एक जुमला कहा, जनाब ज़ुहैर इब्ने क़ैन ने कहा मौला हुसैन से, कहा मौला अगर आप इजाज़त दे दें तो अभी ये हो और उसके साथ 1000 का लश्कर है, हमारे लिए इनसे जंग करना आसान है, हम इनको शिकस्त भी दे देंगे, अगर आप इजाज़त दें तो इनसे हम जंग करें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जंग में पहल नहीं करूँगा, जंग में पहल नहीं। बस अब मसाइब के जुमले 2-3 अर्ज करूँ। हज़रत अब्बास के रोज़े के अंदर जब आप रोज़े में दाखिल होते हैं तो सामने की तरफ, बैनुल हरमैन की तरफ से आप रोज़े में दाखिल हो तो सामने की तरफ एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान लिखा हुआ है। क्या फरमान है? बिनफ्सी अंत या अखी, ए अब्बास तेरा भाई हुसैन तुझ पर कुर्बान हो जाए, हुसैन तुझ पर कुर्बान हो जाए ए अब्बास। क्या था माजरा? 9 मुहर्रम को असर के वक़्त, 9 मुहर्रम के असर के वक़्त मौला हुसैन जनाब ज़ैनब के खेमे में थे, कुछ देर के लिए मौला की आंख लगी, हज़रत ज़ैनब ने सुना घोड़ों के टापों की आवाज़ और लश्कर की हरकत करने की आवाज़ सुनी, मौला हुसैन को जगाया, कहा भाई ऐसा लगता है कि यजीदी लश्कर ने हम पर हमला कर दिया है। मालूम करवाया तो पता चला कि उमर साद का ये कहना है कि या बेयत करो या जंग करो। अब हमला पहल उमर साद की तरफ से हो चुकी है, अब मौला ने कहा अब्बास को बुलाओ। अब हज़रत अब्बास शुजा तरीन इंसान है, ये पहले क्या हुआ था, जब खेमे हटाने की बात आई तो मौला हुसैन ने कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो इस शुजा के दिल में, अब्बास अलमदार के दिल में ये खलिश तो बाकी थी कि किसी तरह लड़ने की इजाज़त मिले, अब तो मौका बन गया है, अब तो उमर साद और उसका लश्कर खुद पहल करके आगे आया है। अब्बास को कहा गया मौला हुसैन बुला रहे हैं, दौड़कर मौला हुसैन की खिदमत में पहुँचे हैं कि शायद यकीनन ये सुनने के लिए कि मौला कहेंगे कि अब्बास हमला करें, जवाब दें। जो ही हज़रत अब्बास दौड़ कर मौला हुसैन के पास पहुँचे, इमाम हुसैन ने पहला जुमला कहा और अब्बास की आंखों में आंसू हो गए, अंदाज़ा हो गया कि क्या कहने वाले हैं। जो ही अब्बास पहुँचे ना, मौला हुसैन ने कहा बिनफ्सी अंत या अखी, अब्बास तेरा भाई तुझ पर कुर्बान हो जाए। वो जिस जोश से आए थे कि अभी इज़्ज़त वगा मिलने वाला है, कहा ना अब्बास तेरा भाई तुझ पर कुर्बान हो जाए। फिर मौला हुसैन ने कहा अब्बास जाओ और इनसे 1 रात की मोहलत ले लो, कहो आज हम नहीं लड़ना चाहते, 1 रात की मोहलत ले लो। सबसे मुश्किल काम क्या होता है एक बहादुर के लिए? दुश्मन से कुछ मांगना। لیکن عباس امامت کا مطیع ہے، گئے اور ایک رات کی مہلت لے لی، شب عاشور گزر گئی۔ اگر میں دل کی قلبی کیفیت کی بات کروں تو عباس علمدار جو حسین کے لشکر کا سب سے شجاع اور بہادر پہلوان ہے، یقیناً صبح عاشور کا انتظار کتنی بے صبری سے کیا ہوگا کہ صبح عاشور اجازت ملے گی اور جنگ کریں گے۔ صبح عاشور علم حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ جس وقت مولا نے علم دیا تو عباس کو اب اندازہ ہو گیا کہ علمدار تو سب سے پہلے جاتا نہیں ہے، اب عباس کی آزمائش شروع ہے۔ عباس کی آنکھوں کے سامنے تمام اصحاب ایک ایک کر کے قربان ہو گئے، حضرت عباس کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی قربان ہو گئے، بھتیجوں کو قربان ہوتے دیکھا، اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، قاسم کو قربان ہوتے دیکھا، ساری شہادتیں دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب حسین اور عباس دونوں بھائی رہ گئے ہیں اور کوئی نہیں بچا ہے۔ حضرت عباس مولا حسین کے پاس آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب مزید میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں میدان میں جاؤں۔ مولا حسین نے کہا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا میرا لشکر تو مقتل میں سو چکا ہے، میرے سارے سپاہی میرے سارے جوان شہادت کے رتبے تر جا چکے ہیں، مولا اس غلام کو مجھے اجازت دے دے۔ عباس کو اجازت ملی ہے، خیام کی طرف گئے کہ سلام کر کے جائیں بہنوں کو۔ دروازے خیمے جناب زینب پر جا کر عباس نے سلام کیا، السلام علیک یا زینب کبری۔ زینب نے عباس کا سلام سنا، کہا بھائی ذرا خیمے کے اندر تشریف لائیے، عباس زینب کے سامنے ہیں۔ مولا جناب زینب کہتی ہیں عباس بابا کی ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے جب تم خیمے کے دروازے پر آئے ہو۔ پوچھا کون سی بات؟ جناب زینب کہتی ہیں عباس میں بابا کی گود میں تھی، میں چھوٹی تھی بابا کی گود میں، میرے بازو سے کپڑا ہٹا، بابا نے میرے بازو کو بوسہ دے دیا، جب بوسہ دیا تو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا بابا کوئی بیٹی کے بازو کو بوسہ دیتا تو نہیں ہے، آپ نے میرے بازو کا بوسہ دیا۔ کہتی ہے بابا نے مجھے کہا زینب ان بازوؤں میں رسیاں باندھ کر تجھے قیدی بنایا جائے گا۔ کہتی ہے عباس میرے بابا نے کہہ دیا، میرا بابا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میں سمجھ نہیں پاتی تھی، میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں جرت ہوگی کہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ عباس آج اس عالم غربت میں اس پردیسی میں جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ اجرکم اللہ۔ عباس خیموں سے واپس آئے مولا حسین کے پاس آخری رخصت ہونے کے لیے، جنگ کرنے جا رہے ہیں، اجازت مل گئی ہے۔ جب مولا حسین کے قریب آئے تو چھوٹے بچوں کی آوازیں آنے لگی، بچے اپنی ماؤں کو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، کوئی اپنی ماں سے کہہ رہا تھا ماں مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میری جان نکلنے والی ہے، العطشان قتلت، آوازیں آنے لگی، بچے اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں۔ مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس پہلے ذرا ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ مشک سکینہ اٹھایا، عباس نے اپنا رخ نہر کی طرف کیا۔ بس ایک جملہ سنیے گا یہاں پر، اب نہر کی طرف جا رہے ہیں خالی مشک کے ساتھ، حضرت عباس نے حملہ کیا، ایسا حملہ تھا جارحانہ انداز ہے، اور حملہ کر کے نہر پر موجود لشکر کو ہٹایا اور گھوڑے کو پانی میں داخل کر دیا، نہر کو پر کیا، پر کرنے کے بعد نہر مشک کو پر کیا، پر کرنے کے بعد ایک دفعہ پیاسا ہے عباس خود بھی، صبح عاشور سے اب تک پیاس، ایک دفعہ پانی کو چلو میں لیا پینے کے لیے منہ کے قریب لائے، لیکن دوبارہ پانی انڈیل دیا نہر میں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے نفس
तुझे जेब नहीं देता कि तेरा मौला हुसैन प्यासा हो और तू पानी से खुद को सैराब करे। अब्बास महर से वापस लौटे, एक जुमला कहूँ, जब नहर की तरफ जा रहे थे तो अंदाज जारहाना था, बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे, लेकिन अब जब नहर से निकलने लगे तो अब्बास की कोशिश ये थी कि किसी तरह इनसे सामना ना हो यजीदियों से, किसी तरह जाएं और अदन और खयाम तक पानी पहुंचा दें। अब जरा दूर का रास्ता लिया, शिमर लेन की सदा गूंजती है, कहता है अगर अब्बास पानी खेमों तक पहुंचा चुका तो फिर दोबारा लड़ने के लिए आएगा, यही मौका है अब्बास को शहीद करने का। कहा घेर कर मारो, तीर मारो, आजादारों अब तीर बारानी शुरू कर दी। अब्बास के हाथ में ढाल है, अलम को संभाला है, मश्क संभाली है, आने वाले तीरों को रोकते हैं, लेकिन कोई तीर बदन में भी पेवस्त हो रहा है, कोई तीर बाजू में भी लग रहा है। आजादारों एक दफा ऐसा होता है, हकीम बिन तुफैल मलऊन एक दरख्त की ओट में छुप जाता है, अब्बास जब पास से गुजरे ऐसा वार किया, अब्बास का दायां बाजू कट कर गिरा। हजरत अब्बास की सदा बुलंद होती है, वल्लाह इन कता तुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अबदन अंदीनी, अल्लाह की कसम तुमने मेरा दायां बाजू कलम कर दिया है, लेकिन मैं अपने हुसैन की हिमायत से दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। आजादारों कुछ फासले पर गए, एक और लईन छुपा बैठा था, उसने जब दूसरा बाजू भी कलम कर दिया, मश्क को दांतों से दबा लिया, दबाने के बाद अपने घोड़े के कान में सरगोशी करते हुए कहते हैं, ए मेरे बावफा घोड़े, किसी तरह मुझे हुसैन के खेमों तक पहुंचा दे ताकि पानी पहुंचा दूं। आजादारों एक तीर आया ऐसा कि जिसने मश्क को छेदा, अब्बास के सीने में तीर पेवस्त हुआ, मश्क का पानी निकलने लगा, अब्बास की आस टूट गई। अपने घोड़े से कहते हैं, ए मेरे बावफा घोड़े, अब मुझे खयाम में मत लेकर जा, पानी नहीं है जो लेकर जाना चाह रहा था। आजादारों इतने में एक तीर आया जो अब्बास की आंख में पेवस्त होता है, आंख में तीर का लगना था, अब्बास जीन से जमीन पर आ गए। अजरकुम अल्लाह, एक जाकिर एक खतीब जो हजरत अब्बास के मसाइब पढ़ा करता था, उसने हजरत अब्बास को ख्वाब में देखा तो जनाब अब्बास ने उससे कहा, तू मेरी सारी मुसीबत क्यों नहीं सुनाता आजादारों को? इसने कहा, मौला मैं आपकी सारी शहादत पढ़ता हूँ। कहा, तू ये क्यों नहीं बताता कि जब भी कोई घुड़सवार अपने सवार से गिरता है तो वो अपने हाथों का सहारा लेकर गिरता है, अरे मैं जब घोड़े से गिरा मैं अपने गालों के बल घोड़े की जीन से जमीन करबला पर आया। आज रुकू बदल्ला, बस आजादारों दो जुमले, जमीन करबला पर आए। अजीब है अब्बास जैसा जरी, जब भी कोई शहीद घोड़े की जीन से गिरा है ना तो इमाम हुसैन को सदा दी है। अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए, ये सदा नहीं दी है हुसैन को, क्योंकि जानते हैं भाई अकेले रह गए हैं, हुसैन को जहमत नहीं देना चाह रहे। अब उतरे हैं दश्त करबला में अब्बास, आंख में तीर पेवस्त है, अपनी आंख का तीर निकालना चाह रहे थे, जब देखा कि आंख का तीर निकालूं, देखा कि बाजू कलम है, हाथों से तीर निकाले जाते हैं, हाथ नहीं थे। आजादारों मौला अब्बास ने इमाम हुसैन को सदा दी है, कब दी है? अब जरा जुमला सुनो, अब्बास ने अपनी आंख का तीर निकालने के लिए तीर को अपने दोनों घुटनों के अंदर फंसा लिया, अब फंसाने के बाद अपने सर को पीछे की तरफ धकेला ताकि तीर निकाले। जिस वक्त सर को पीछे की तरफ धकेल रहे थे, एक लईन ने सर पर गुर्ज का वार किया, गुरज जब लगा अब्बास को, अब्बास की सदा बुलंद होती है, अखी हुसैन अदरिक अखाक, ए भाई हुसैन अपने भाई की मदद कीजिए, मौला हुसैन अपने भाई के सिराने पहुंचे। हुसैन मौला ने क्या देखा, देखा कि भाई के बाजू कटे हुए हैं, आंख में तीर लगा हुआ है, अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, पेशानी से खून साफ किया। अब्बास ने आंख खोलने की कोशिश की, कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा, मैं हाथ उठाकर सलाम नहीं कर सका। मौला एक जहमत देनी है, बस आखिरी दो जुमले आजादारों, अब्बास की शहादत मुकम्मल कर रहा हूं। अब्बास कहते हैं मौला एक जहमत देनी है, मौला मेरे हाथ नहीं है वरना जहमत न देता, मौला मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरे आंख में खून भर चुका है, मौला जरा मेरी आंख का खून साफ कर दें ताकि आपके चेहरे की जियारत करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हुसैन ने अबा के दामन से अब्बास की आंख का खून साफ किया। आजादारो कुछ देर के बाद मौला हुसैन की सदा बुलंद होती है, अल आन इनकस ज़हरी, अरे मेरी कमर टूट गई। बस असाधारो आखिरी जुमला कहूँ, खयाम में जनाब सकीना ने बच्चों को जमा करके सबके हाथ में कूजे दे दिए हैं, बच्चों से कह रही हैं, बच्चों मेरा चचा पानी लेने गया है, बस अभी चचा आने वाले हैं, चचा आएंगे तुम सबको सैराब कर देंगे। आजादारो खेमे के बाहर आहट होती है, सकीना दौड़ के गई, मेरा चचा आ गया। जब बाहर निकली देखा कि मौला हुसैन खून में डूबा अलाम, छिदी हुई मश्क लेकर आए। सकीना ने पुकार कर कहा बाबा मेरा चचा। कहा सकीना बाजू कटाए फुरात के किनारे सो गया। सकीना कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा चचा वापस आ जाए।